ओम शांति। आप पूरा कीजिए शॉर्ट में कि आप यहाँ से क्या लेके जा रही हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो आज का जो विषय है इनवोकिंग योर इनर पावर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। परमात्मा के आप सभी बहुत ही चुने हुए, आप देखिए कोटों में से भी कोई में से भी कोई यहाँ चुने हुए पहुंचे हैं, और उसमें से भी आज विशेष आप कुछ चुने हुए रतन हैं जो यहाँ बैठे हैं। सभी भविष्य, दुनिया के भविष्य की तकदीर बनाने की कलम आपके हाथों में परमात्मा ने दी है। तो दुनिया की तकदीर बनाने से पहले स्वयं की तकदीर बनाना है, जो यहाँ का मोटो है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो इतना श्रेष्ठ कार्य हम करना चाहते हैं, और आप सभी ने बहुत अच्छा टेक अवे बताया कि हम इस किस प्रकार से जो यहाँ सीखा उसको हम सस्टेन करना चाहते हैं। आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, और इस यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी पढ़ाई जो स्वयं परमात्मा करा रहे हैं, जीवन की पढ़ाई वो पढ़ रहे हैं। तो हर पढ़ाई की का इम्तहान भी होता है, एग्जाम भी होता है, है ना, तब पता चलता है कि हमने कितना पढ़ा है, और तब प्रमोशन भी होता है नेक्स्ट क्लास में। तो ऐसे ही आप सभी ने जो यहाँ पाया, जो यहाँ प्राप्त किया, यहाँ से आप जैसे ही बाहर जाएंगे तो वो परीक्षाएं तैयार हैं आपके लिए, है ना, कि आपने जो यहाँ सीखा है उसकी कसौटी, कितना सीखा है, क्या सीखा है, तो वो सब तैयार है। यहाँ जितनी शांति है, जितना प्रेम, जितनी पवित्रता है, बाहर जाएंगे तो उतना ही सब कुछ ऑपोजिट। और उस ऑपोजिट में आप कैसे ये बनाए रखें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा आंतरिक, हम अपने आप को सशक्त करें। और वो सशक्त करने के लिए उस समय बहुत जरूरी है कि हम हमारे जो आंतरिक शक्तियां हैं, जो हमारे इनर पावर्स हैं, उसको हम उस समय आह्वान करके उसका प्रयोग कर सके। तो इसलिए बहुत जानना जरूरी है कि जो हमारा टेक अवे है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए हमारी आंतरिक शक्तियां कौन सी हैं, जो हमें समय प्रति समय हम उनका आह्वान करें और उनका प्रयोग करें। वैसे तो सर्वशक्तिवान है शिव बाबा, और शिव बाबा जिनको अब तक तो हम भगवान परमात्मा कहते आए, लेकिन अब हमने जबकि उनके साथ अपना संबंध जोड़ दिया है, नाता जोड़ दिया है, और एक समझ आ गई कि वो सर्व आत्माओं के पिता शिव वो मेरा अपना है, तो हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। तो वो सर्वशक्तिवान शिव बाबा की तो अपार शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां, जो कहते सागर को स्याही बना दो, जंगल की लकड़ियों को कलम बना दो, धरती को कागज बना दो, तो भी वो शक्तियां कभी कम नहीं होगी, उनका वर्णन, उनका लेखन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी इन अपार शक्तियों में से कुछ अष्ट शक्तियां, जो आपके सामने ये चित्र भी है, कुछ अष्ट शक्तियां हैं जिनसे कनेक्टेड बाकी सब शक्तियां हैं। ये अष्ट शक्तियां अगर हमने अपने जीवन में धारण कर ली, अगर हमने इनको इन्वोक कर लिया, तो बाकी सब शक्तियां हमारे अंदर आ जाती है, और कोई परिस्थिति की ताकत नहीं जो वो हम पर हावी हो सके, है ना। तो इसलिए ये अष्ट शक्तियां क्या है, और कैसे हम इनको इन्वोक करें, कैसे इनके प्रयोग से हम हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करें, और जो हमारा लक्ष्य है उस पर हम सफलता से, सहजता से, निर्विघ्न से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, उसको अभी हम समझेंगे। सबसे मुख्य बात इन सभी शक्तियों को धारण करने के लिए सबसे पहली बात है डिटैचमेंट, न्यारा हो जाना। अब आप कहेंगे आप तो यहाँ माउंट आबू में रहते हैं, तो आपके लिए तो डिटैचमेंट बहुत अच्छा है। अब हम यहाँ पर हैं तो सबसे डिटैच हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ से जाने की बात तो कर्म क्षेत्र में जाना है, और उस कर्म क्षेत्र पे डिटैच होना वो कैसे होगा, है ना। ये डिटैचमेंट क्या है, क्योंकि सबसे पहली शक्ति जो परमात्मा हमें बताते हैं वो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। मीडिया कर्मियों को तो हर चीज का विस्तार करना होता है ना, विस्तार में बताते हैं, और यहाँ पर शिव बाबा जो हमें शक्ति देते हैं वो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जिसमें कछुआ बताया गया है। कछुआ क्यों बताया है कि कछुए के सामने कोई भी सबसे बड़े से बड़ा डेंजर भी यदि आ जाता है तो कछुआ क्या करता है, उसके जैसा लड़ता नहीं है लेकिन क्या करता है, संकीर्ण कर लेता है, अपनी इंद्रियों को संकीर्ण कर लेता है, अपने शैल के अंदर ले जाता है। उसकी एक प्लस पॉइंट है कि उसका शैल इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि अगर हाथी का पांव भी आ जाए तो भी उसको कुछ नहीं होगा। तो ये जानता है, उसको ये समझ है, तो इसलिए वो अपने आप को सेफ कर लेता है, विस्तार को संकीर्ण कर लेता है, उलझता नहीं है। लेकिन सल्यूशन क्या करता है कि उससे डिटैच होकर अपने में हो जाता है। तो यही मिसाल कछुआ, जो कछुआ है फिर भी इंटेलिजेंट है, तो हम तो इंसान है, तो शिव बाबा हमें यही ज्ञान देते हैं। सबसे पहला ज्ञान कौन सा लिया आपने, कि आप कौन है, आत्मा है। ये सबसे पहला ज्ञान है और सबसे अंतिम पाठ है ये, कि मैं आत्मा हूं। जैसे ही हम ये संकल्प कर लेते हैं मैं आत्मा हूं, तो हम किससे डिटैच हो जाते हैं, अपने इस बॉडी से जो इंद्रियां हैं, है ना। तो जैसे कछुआ अपने शेल के अंदर चला जाता है, तो ये बॉडी जो शेल है उसके अंदर मैं यहाँ आत्मा हूं, इसकी स्मृति में आ जाना, तो बाहर कितनी भी कैसी भी परिस्थिति हो उससे हम हमेशा सेफ रहेंगे। तो ये विस्तार को संकीर्ण करने के लिए हमें डिटैच होना है, डिटैच फ्रॉम द बॉडी। तो हम डिटैच फ्रॉम द एनवायरमेंट होंगे, तब हम अटैच हो जाएंगे हमारे उन ओरिजिनल संस्कारों के साथ। और वो ओरिजिनल संस्कार हमारे कौन से, जब मैंने कहा मैं आत्मा हूं तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार कौन से आपको बताए थे ना, आत्मा का सेशन किया था ना आपने, कौन से बताए थे, सबसे पहला ज्ञान, ज्ञान मिलता है ना, ज्ञान से क्या आती है, शुद्धता, पवित्रता। जहां पवित्रता है, पवित्रता जननी है सुख और शांति की। जहां सुख शांति है वहां आपस में प्रेम है, तो आनंद भी है और तब शक्ति भी है। इसलिए सात गुण कौन से हुए, सात ओरिजिनल संस्कार कौन से हुए, एक बार रिपीट कर लेंगे, ज्ञान, सभी बोलेंगे ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। इसको हमेशा याद रखें कि ये हमारी ओरिजिनल संस्कार हैं। इसमें आ जाना ही संकीर्णता में आ जाना है, सार में आ जाना है। बाहर बहुत विस्तार है इसीलिए अशांति है, बहुत विस्तार है इसीलिए दुख है, बहुत विस्तार है इसलिए अज्ञानता में चले गए हैं, बहुत विस्तार है इसलिए अपवित्रता है, बहुत विस्तार है इसलिए दुख और अशांति के कारण शक्तिहीन महसूस करते हैं। लेकिन उस विस्तार से जैसे ही हम डिटैच होकर अपने में यहाँ पे स्थित हो जाते हैं, तो जो शांति सुख चाहिए वो यहाँ है ना, बाहर भी नहीं, यहाँ से हम वायुमंडल बनाते हैं। आज इधर जो आप कह रहे हैं कि हमें सुख शांति की अनुभूति होती है, तो वो क्यों होती है, क्या इधर पत्थरों में वायुमंडल में जो सुख शांति है वो क्यों है, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ जो रहने वाले हैं वो ये अभ्यास करते हैं, आत्मिक अभ्यास। जो यहाँ पे स्थापना हुई थी हमारे आदि पिता और मम्मा के द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने इतनी तपस्या की कि रात रात जागकर जल्दी उठ करके 2 बजे उठ करके किताबों में लिखते थे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। उनकी वाइफ का नाम यशोदा, तो यशोदा आत्मा है, तो हर एक के लिए मैं आत्मा हूँ, फलानी आत्मा है, दीवारों तक लिख देते थे, इतना उन्होंने अभ्यास किया। जो आदि जो हमारे फाउंडर थे, आप सोचिए जो ब्रह्मा से नारायण बनने वाली आत्मा है, जो सत्युग के प्रथम प्रिंस बनने वाले हैं, उन्होंने इतनी तपस्या की, इतना प्रयास किया, तो आप सोचिए कि हमें कितनी प्रैक्टिस करनी है ना। तो ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। इससे बहुत सहज डिटैचमेंट हो जाता है। एक सहज एक्टिविटी कर लेते हैं, आप सभी कुर्सी पर बैठे हैं ना, तो सीधे होकर के बैठ जाइए कुर्सी पे, आगे आ जाइए, जो पीछे बैठे हैं आगे आ जाइए, आगे सीट है, आगे आ जाइए। हाँ जी, तो आप कुर्सी के ऊपर एकदम सीधे होकर बैठ जाइए, आपकी पीठ कुर्सी की पीठ से लगा दीजिए, आपके हाथ कुर्सी के हाथ से लगा दीजिए, आपके पांव कुर्सी के पांव से लगा दीजिए। और आप सभी अभी कुर्सी से एकदम चिपक गए हैं। कौन सा ग्लू लें जिससे तुरंत चिपक जाए और फास्ट चिपक जाए? कौन सा ग्लू लें? फेविक्विक। ओके, फेविक्विक से चिपक गए हैं, पीठ चिपक गई है, हाथ चिपक गए हैं, पांव भी चिपक गए कुर्सी के पांव से। कुर्सी के पांव से लगा दो पांव को, सब एकदम सीधे होकर के सब हो गए। अभी आप नहीं है, लेकिन आप कुर्सी हैं। कौन है आप? कुर्सी हैं। अब आपको क्या करना है? इस कुर्सी को खिसकाना है, लेफ्ट या राइट, जहां भी जगह मिले खिसकाइए। पीठ चिपकी हुई है, पीठ चिपकी हुई है, हाथ चिपके हुए हैं, हाथ पांव सब चिपके हुए हैं, पीठ भी एकदम चिपकी हुई है, एकदम फेविक्विक से चिपके हुए हैं, चिपके हुए पांव पूरे चिपके हुए हैं, पांव जरा भी हिल नहीं सकते, हाथ नहीं हिल सकते, पीठ नहीं हिल सकती, आप पूरे चिपके और आप कुर्सी हैं। क्या खिसका सकते हैं? खिसका सकते हैं? पक्का नहीं खिसका सकते? ओके, रिलैक्स, आप कुर्सी नहीं है अभी, आप चिपके हुए नहीं है अभी, आप तो जो है सो है ना। अब खड़े हो जाइए, तो एक बार खड़े हो जाइए। हाँ, क्योंकि आप तो कुर्सी है नहीं, तो आप चिपके हुए भी नहीं है, तो आप खड़े भी हो सकते हैं। अब कुर्सी को खिसकाइए, कहीं भी खिसका सकते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। अभी खिसकाना तो क्या, बैठ जाइए, खिसकाना तो क्या, लेकिन आप उठा के भी रख सकते हैं, है ना। अब इससे हमें क्या सीखने को मिला? कुर्सी, क्या उसमें कोई पावर है? है कुर्सी में कोई पावर? है कोई शक्ति उसके अंदर? लेकिन हम थोड़ा सा खिसकाना चाहते थे, नहीं खिसका पाए, नहीं खिसका पाए ना। तो इसका मतलब कुर्सी जिसमें पावर नहीं है, उसने ओवर पावर कर दिया हमें। हम मालिक कुर्सी के, हम रचयिता कुर्सी के, कुर्सी हमारी रचना, लेकिन फिर भी हम खिसकाना चाहते थे, हम खिसका नहीं पाए। क्यों? क्यों? अटैच्ड हो गए थे। एक तो हम कुर्सी से चिपक गए, अटैच्ड हो गए, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, अटैचमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रीजन, ओवरपावर क्यों किया कुर्सी ने? कौन सी मानसिकता? हम खुद को कुर्सी समझने लगे, हम अपनी आइडेंटिटी भूल गए कि हम कौन हैं, हम मीडिया कर्मी हैं, हम तो मालिक हैं, हम रचयिता हैं, हम भूल गए। और हम क्या, हमने क्या सोचा, क्या समझा अपने आप को? कि हम कुर्सी हैं। हमने कुर्सी की आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी बना ली, इसीलिए कुर्सी में कोई पावर न होते हुए भी उसने हमारे पर ऐसा हावी कर दिया कि हम एक इंच भी खिसकाना चाहे तो हम खिसका नहीं पाए। ऐसी ही परिस्थितियां हैं, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे किसी ने बुरा भला कह दिया, चाहे किसी ने अपमान कर दिया, चाहे जैसे आपने चाहा वैसे बच्चों ने नहीं किया, जैसे आपने किसी से अपेक्षा रखी वैसे पूरा नहीं हुआ, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हैं, अचानक की कोई परिस्थिति है, किसकी अचानक मृत्यु हो गई, किसी का कुछ हो गया, चाहे अचानक बीमारी आ गई, कुछ भी, चाहे व्यक्ति से हो चाहे प्रकृति से हो, कोई भी परिस्थिति है उसमें कोई शक्ति नहीं है। इसको हम अच्छे से समझ लें आज इस बात को, कि कोई भी परिस्थिति जो पराई है, जो हमारे से परे है, उसमें कोई भी शक्ति नहीं है। शक्ति किसमें है? स्वस्थिति में। परिस्थिति में नहीं, स्वस्थिति में शक्ति है, मैं शक्तिशाली हूं। लेकिन हम अपनी इस आइडेंटिटी को भूल जाते हैं कि सर्वशक्तिवान की संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस आइडेंटिटी को भूलकर परिस्थिति से अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। उस जो किसी ने कुछ कहा उसमें ही अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, उसका दुख हुआ, उसका दर्द हुआ, है ना, और उससे अटैच्ड हो गए तो क्या हो गया, अपने आप को शक्तिहीन समझ लिया, और इतना शक्तिहीन कि भगवान को भी ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये भगवान मैं ही मिला या मैं ही मिली क्या आपको, ये परिस्थिति मेरे पास ही क्यों है, है ना, मेरे ही भाग्य में क्यों ऐसा है। तो इस प्रकार से हम अपने आप को शक्तिहीन होकर के सर्वशक्तिवान को भी ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, तो एक पाप तो होता है दूसरा और पाप के ऊपर पाप, गलत के ऊपर गलत होता जाता है, और इस प्रकार से हम बोझिल हो जाते हैं। तो इसीलिए डिटैच होना, अपनी स्वस्थिति में रहना, डिटैचमेंट और कुछ नहीं है। डिटैचमेंट क्या है, जो मेरी मेरा अस्तित्व नहीं है उससे डिटैच है, और जो मैं हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप हूं, उससे अटैच होना, यही डिटैचमेंट है। तो ये तो कर सकते हैं, इस कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं, और इसमें रह गए तो बाकी सब शक्तियां हमारे अंदर आ जाती है। इसी शक्ति के साथ पार्वती माँ का बताते हैं, क्योंकि पार्वती जो वृत्ति से परे, कौन सी वृत्ति, नकारात्मक वृत्तियों से परे, जो दैहिक वृत्ति से परे, इस देह अभिमान से जब हम परे हो जाते हैं, आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं, तो पार्वती माँ की तरह हम डिटैच, कमल फूल के आसनदारी, कमल फूल जो कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ का दाग उस पर नहीं। हमें दुनिया में रहना है, हर अपना जो प्रोफेशन है वो करना है, लेकिन वो करते हुए मन बुद्धि से हमें उससे डिटैच होकर अपने अस्तित्व में रह करके करेंगे तो उसका दाग हमारे ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन हम अपनी मनोस्थिति से, अपनी स्वस्थिति से वो वायुमंडल हम क्रिएट कर सकेंगे। जो यहाँ वायुमंडल आपको बना है वही का वही वायुमंडल आप अपने कर्म क्षेत्र पर भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर कौन है, क्रिएटर कौन है, क्रिएटर मैं हूँ, हम है क्रिएटर, मैं क्रिएटर हूँ, है ना। वायुमंडल क्रिएटर नहीं है कि वायुमंडल ऐसा है इसलिए मैं शांत हूँ यहाँ पे, नहीं, लेकिन मैं शांत हूँ और उस शांति के वाइब्रेशन से वायुमंडल मुझे क्रिएट करना है। तो इसलिए ये संकल्प लेकर के जाएंगे तो कंप्लेन नहीं करेंगे, तो फिर कंपैरिजन नहीं करेंगे, हाँ यहाँ तो बहुत शांति थी ना इसके लिए हम उतने शांत हो गए, नींद अच्छी आई, लेकिन यहाँ तो है ही अशांति तो कैसे नींद आएगी। तो फिर हम अटैच हो गए उस सिचुएशन से, डिटैच, मैं अपने सिचुएशन में, अपनी आइडेंटिटी में रह हूं, तो फिर परिस्थिति चाहे कैसी भी है मुझे अच्छी नींद जरूर से आएगी। और जब ये हमारे अंदर शक्ति आ जाती है तो नेक्स्ट पावर जो आप देख रहे हैं वो है समेटने की शक्ति। अभी जाने का दिन आ रहा है तो समेटना शुरू हो रहा है ना, कि चलो क्या क्या हमें ले जाना है वापस। अब यहाँ पर जो कुछ भी है सब कुछ तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन जितना आप लेकर आए हैं, जो लेकर आए हैं और जो जरूरी है जो आपको यहाँ से ले जाना है वो ये आप ले जाएंगे। जब आप यहाँ पर आए भी थे तब भी आप घर से सब कुछ तो नहीं लेकर आए कि पता नहीं वहां ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये सोच के सब कुछ तो नहीं आपने इकट्ठा किया, लेकिन जो एसेंशियल्स हैं, जो जरूरत है वही लिया। ट्रैवल लाइट है ना, ऐसे ही जीवन यात्रा है हमारी। इस जीवन यात्रा में भी हमें क्या करना है, ट्रैवल लाइट। जितना हम लाइट ट्रैवल करेंगे हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ती जाएगी, जितना हम बोझिल रहेंगे जो परिस्थिति है, बोझिल भी तब होते हैं जब परिस्थिति से अटैच्ड है। जब परिस्थिति का चिंतन है तब उसका बोझ है, और वो बोझ हमें भारी कर देता है ना? फिर हमारी शक्तियां बढ़ती नहीं, और भी है वो भी कम हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ट्रैवल लाइट करें। तो क्या होता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं और जब वहां से निकलते हैं तो हम क्या कहते हैं, अगर कोई भूल चूक हो गई हो ना तो माफ कर देना, है ना। कोई अगर डेथ बेड पे है तो वो क्या करते हैं, अपने मित्र संबंधियों को बुलाते हैं और कहते हैं अगर कुछ हो गया हो ना तो माफ कर देना, है ना। तो अंतिम समय पर हम माफी मांगते हैं, लेकिन हमारी इस यात्रा में हर पल हर रोज सबसे पहले तो हम अटेंशन दें कि हम ऐसा कुछ करें ही नहीं जो माफी मांगना पड़े, और अगर कुछ हो भी जाए तो हम माफी मांग लें और माफ कर दें। अर्थात अपने मन बुद्धि पर कोई भी बोझ न रखे किसी भी बात का, लेट गो कर दे, भुला दे उसको। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपने ही साथ अपने से ही कुछ हो गया हो उससे को लेकर के बहुत चिंतित हो जाते हैं, अरे काश मैंने ये नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता, काश मैंने ऐसा नहीं बोला होता तो कितना अच्छा होता। कभी खुद से ही जो कुछ हो जाता है गलत उसी को सोच करके हम भारी हो जाते होते हैं ना, और उसी को लेकर हम चलते हैं। तो जब हम खुद को ही नहीं माफ कर सकते तो फिर दूसरा सामने अगर आ जाए तो उसको कैसे माफ कर सकेंगे, नहीं कर सकते। जब तक हमने खुद को प्यार करना नहीं सीखा तब तक हम दूसरों को भी प्यार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस शक्ति के लिए, समेटने की शक्ति के लिए माँ दुर्गा भी बताते हैं, जो शक्तिशाली भी है स्वरूप लेकिन स्नेह स्वरूप भी है। तो परिस्थिति के सामने शक्तिशाली भी बनना है लेकिन स्वयं के साथ स्नेह स्वरूप भी बनना है, अपनी कमी कमजोरियों को प्यार से उसको परिवर्तन करना, तभी हम दूसरे की कमी कमजोरियों को भी प्यार से माफ कर सकेंगे, उसको अपने दिल पे नहीं बिठाएंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि अगर फलाना कुछ कह रहा है तो उसके पीछे कुछ रीजन है, अगर कोई ईर्ष्या कर रहा है तो जरूर है कि वो खुद असंतुष्ट है अपने लाइफ में इसलिए वो ईर्ष्या कर रहा है। अगर कोई लेग पुलिंग करता है, कोई आपका क्रेडिट लेकर के चला जाता है तो जरूर है वो अपने जीवन में कुछ अपति का महसूस कर रहा है, कमी का महसूस कर रहा है और इसलिए उसको देखा नहीं जा रहा है दूसरे की प्राप्ति, है ना। दूसरे की जो प्राप्ति है, दूसरे की जो सफलता है वो उससे देखा नहीं जा रहा है। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो हो सकता है कि वो अपने ही कुछ टेंशन में है, कुछ स्ट्रेस में है। तो इसीलिए कभी कभी होता है ना, आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं और आपने कभी कभी मान लो किसी को चलते चलते आप गुड मॉर्निंग कर लेते हो लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आता कभी कभी वापस, तो उस समय पर क्या होता है, उस समय क्या होता है, कभी नेगेटिव क्रिएट कर लेते हैं कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर दिया, तो खुद के प्रति सोचेंगे या उसी के प्रति सोचेंगे कि देखो इतना हम गुड मॉर्निंग कर रहे हैं लेकिन इसको तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, या उसके प्रति नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन पास्ट जो भी हम देख रहे हैं, जो भी पास्ट हुआ उसको फुल स्टॉप, वर्तमान में भी जो वो अपने वर्तमान संस्कार इमर्ज कर रहे हैं चाहे वो नेगेटिव हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन उसको भी देखते हुए उसको हम फुल स्टॉप उसी समय लगा दें, और भविष्य की चिंता क्या होगा कैसे होगा ये होगा या नहीं होगा, यहाँ से जाने के बाद भी आपको चिंता होगी, अच्छा यहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा हुआ, अब पता नहीं क्या परिस्थिति आएगी, कैसे होगा, हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहले से ही आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करते जा रहे हैं, है ना। जो हमने पाया इतनी खुशी इतनी शक्ति भविष्य का सोच के, अभी से ही उसको हम गंवाते जा रहे हैं। तो भविष्य के लिए भी पॉजिटिव नहीं, जो होगा अच्छे थे अच्छा ही होगा। तो ये जो मंत्र है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो तो अच्छे थे अच्छा ही होगा। इसको सिर्फ मंत्र के रूप में नहीं रखें, इसको सिर्फ पॉइंट के रूप में नहीं रखें। जैसे वो माला फेरते हैं ना, बस माला फेरते जाते हैं और बुद्धि भटक रही है, ऐसे नहीं। लेकिन फील करें, प्रैक्टिकल फील करें, करें अभी, कर सकते हैं करिए अभी। सीधे बैठ जाइए सभी, आंखें खुली रखिए और सामने ले आए उस सिचुएशन को, उस चैलेंजिंग पर्सन को जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है, उसको लेकर आइए और अभी उसके प्रति पॉजिटिव सोचिए। जो कुछ भी उसके बारे में आपने पकड़ के रखा है, उसके बारे में जो इम्प्रेशन है, उसके बारे में जो गलत फहमियां हैं, जो कुछ भी है उसकी नेगेटिव इम्प्रेशन है, उस सबको फुल स्टॉप, लेट गो कर दे। जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, वैसे ही वो आत्मा भी परमात्मा की संतान है, प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है। उसके भी ओरिजिनल संस्कार को देखना शुरू कर दीजिए, डिटैच हो जाइए इस बॉडी से, उसके भी जो उसका प्रेजेंट पर संस्कार है उससे डिटैच हो जाइए और देखिए उसको उनके ओरिजिनल संस्कार में, और दिल से निकले जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है जो अच्छा हुआ वो देखिए, और जो होगा पूरा विश्वास कि अच्छे से अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा कल्याणकारी परमात्मा है और मैं उसकी संतान हूं, तो मेरा तो अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता। जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा आंधी या तूफान। तो इतना विश्वास रखते हो, इसको फील कीजिए, इस बात को फील कीजिए कि सब कुछ अच्छा ही होना है और सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। हो रही है महसूसता, हो रही है अंतर में? ये फीलिंग को बनाए रखना, ये है समेटने की शक्ति की पावर, है ना। तो माँ दुर्गा की तरह हमें फुल स्टॉप लगाना और सिर्फ जो अच्छी बातें हैं, जो पॉजिटिव बातें हैं, जो मेरे लिए यूजफुल है, जो मेरी आत्मा की शक्ति को बढ़ाएगा, उसको मुझे ले करके समेट करके आगे बढ़ते जाना है। और जब हम ये समेटने की शक्ति को धारण करेंगे, दूसरों को माफ कर पाएंगे, तब नेक्स्ट शक्ति हमारे अंदर आती है और वो शक्ति है सहन शक्ति, सहनशीलता। बहुत बड़ी शक्ति है ना। कौन समझता है कि हमें बहुत सहन करना पड़ता है? जरा हाथ खड़ा करें। बहुत सहन करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है बहने, सहन करना पड़ता है, हाथ खड़ा करें। हाँ करें, सिर्फ भाई लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहनों को सहन करना पड़ता है। देखिए भाई भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है, और खास करके मीडिया फील्ड में है तो कितना कुछ करना पड़ता होगा, है ना। लेकिन जब हम ये संकल्प कर लेते हैं कि मुझे बहुत करना पड़ता है, तभी वो हमारी सहन शक्ति खत्म होने जाती है। क्योंकि हमने ये सोचा ना बहुत करना पड़ रहा है, तो वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम मजबूरी से कर रहे हैं, पढ़ रहा है ना, बहुत पढ़ रहा है, तो वो मजबूरी आ गई ना, वो एक नेगेटिव थॉट आया है ना जो हम करने जा रहे हैं उसके पीछे। तो वो नेगेटिविटी क्या करती है? हमारी सहनशीलता को बढ़ाने के बजाय और ही घटा रही है, घटा रही है। तो सहनशीलता, जिसके लिए बताया है कि एक वृक्ष फलों से फूलों से लदा हुआ, और उसके ऊपर जब पत्थर फेंकते हैं तो क्या देता है? वो फल देता है, फल देता है, रिटर्न में पत्थर नहीं देता। और आज क्या होता है? थोड़ा भी किसी ने कुछ ऐसा, हमने जैसा चाहा वैसा अगर नहीं हो पाया, तो अब तक तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन था उस व्यक्ति के प्रति, तारीफ कर रहे थे हम उसकी सब जगह पर कि ये कितना अच्छा है, ये इतना अच्छा है, इतना सपोर्ट करता है, इतना अच्छा है। और एक बार उसकी कोई मजबूरी होगी, कुछ भी होगा, लेकिन उसने वैसा नहीं किया जैसा हमने चाहा, और तुरंत हमारे अंदर से क्या निकलता है? ये तो है ही ऐसा, हमने तो क्या सोचा था इसके लिए, और ये तो देखो कैसा निकल गया। हाँ ये ऐसा करता है, तुरंत नेगेटिव, जस्ट बिकॉज उसने वो नहीं किया जो हमने चाहा, हमने ये नहीं देखा कि उसके पीछे उसका क्या कारण हो सकता है नहीं करने का, उसको हमने नहीं समझा। इतने समय की जो हमारी फ्रेंडशिप, इतने समय का जो हमारा प्यार, वो एक सेकंड में हमने उसको खत्म कर दिया। हम खत्म कर देते हैं, सहनशीलता नहीं, और फिर हम कहते हैं अरे हमें उसकी इंसल्ट, हमने उसने इतना जो गलत किया उसका, देखो हमें कितना सहन करना पड़ रहा है। वास्तव में ये क्यों करना पड़ रहा है, क्यों मजबूरी से करते हैं, क्योंकि हमने उसके, उसने जो कहा उसको, उसका दर्द हमने लिया, उसका दुख हमने लिया, और वो दुख जो हमने लिया उसके कारण, हमारी शक्ति कम होने के कारण हमें मजबूरी से सहन करना पड़ रहा है। लेकिन उसी सिचुएशन में होता है ना अक्सर सबके साथ कि हम जैसा चाहे वैसा ना हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे आपके पार्टनर के साथ हो, चाहे आप कर्म क्षेत्र पर हो, आपके कर्मचारियों के साथ हो, चाहे बॉस के साथ हो, है ना, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ तो आ ही जाता है। कभी यहाँ रहते हुए भी हो ही गया होगा कभी ना कभी कुछ भी, है ना, थोड़ा बहुत तो वो कोई भी एक सिनेरियो को सामने ले आओ, और अब उस सिनेरियो में उसके जो नहीं कर पा रहा है वो, उसके प्रति नेगेटिव के बदले हम फिर से डिटैच हो जाएं उसके वर्तमान संस्कार से, अपने शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप के संस्कार में आ जाएं, और उस प्रेम स्वरूप की भावना से उस आत्मा को देखें, उस सिचुएशन को देखें, उसको समझने की कोशिश करें क्यों नहीं वो कर पा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। तो ऐसे करने से कौन सा गुण इमर्ज हो रहा है, कौन सा गुण इमर्ज हो रहा है, कीजिए, अभी कीजिए, उस सिचुएशन को सामने ले आइए। उसने नहीं किया जैसा आप चाहते हो, नहीं किया उसने, और अब आप अपने ओरिजिनल संस्कार में रहिए, डिटैच हो जाइए उसने जो कुछ भी किया नहीं किया उससे, अपने ओरिजिनल संस्कार में आकर के अब आप उसको देखिए तो कैसा महसूस हो रहा है, क्या गुण इमर्ज हो रहा है उसके प्रति, क्या भावना इमर्ज हो रही है, क्या कहेंगे, कौन सी अच्छी भावना, प्रेम की भावना आ रही है उसके प्रति, उसके लिए दुआ आ रही है, सकारात्मक सोच रहे हैं तो उसके प्रति कौन सी भावना आ रही है, हाँ जी, उसकी क्या मजबूरी है वो समझने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर क्या भावना आ जाती है उसके प्रति, दया, रहम भावना, है ना, एक एम्पथी, सिंपथी तो नहीं कहेंगे, एम्पथी, एक रहम भावना। तो ये रहम भावना जब हमारे अंदर आ जाती है तो उस समय हम देखते हैं कि हमारी सहनशीलता बढ़ जाती है, उसने जो कहा किया उसका दुख नहीं होना, ये है सहनशील होना, उसके प्रति रहम भावना आना, ये है सहनशील होना। तो ये हम मजबूरी से करते हैं, अभी आपने जो किया ऐसा तो क्या मजबूरी से किया, मजबूरी से किया, करना पड़ रहा है इसलिए किया, किस कारण किया, किस प्रेम के कारण किया, अपने ओरिजिनल संस्कार, हमारे है ही संस्कार, ये सहनशीलता तो मेरा संस्कार है, उसके कारण किया। तो ये हम अपने संस्कारों में स्थित होकर उसके भी ओरिजिनल संस्कारों को देखा, उसको भी अपना समझा कि ये मेरा अपना है, है ना, कभी भी जो अपना होता है उसकी हम निंदा नहीं करेंगे। क्यों, अभी जैसे इसके लिए जो सहनशीलता के लिए जो देवी बताते हैं ना, वो जगत माता, जगत अम्बा, जगदम्बा माँ बताते हैं, क्योंकि माँ का दिल जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, और बच्चों के लिए तो विशेषतर। तो मेरे बच्चे हैं, एक बार क्या हुआ था, एक ट्रेन में मैं आ रही थी, तो उस ट्रेन में एक माताजी अपने एक बच्चे का, छोटा सा कुछ महीनों का ही बच्चा था, उसके बाजू में था, और वो बच्चों जब बच्चा जो था ना वैसे ऐसे अपना पांव कर रहा था माता जी को लग रहा था, तो एक दूसरी बहन जो बैठी हुई थी ना उसने कहा कि देखो आपका बच्चा है ना आपको लात मार रहा है, उसके पांव को आप ऐसे कर दीजिए, उसके लात लग रहे हैं आपको। तो उस माँ ने क्या कहा, उसने कहा कि ये लात नहीं मार रहा है, ये बच्चा है ना साइकिलिंग कर रहा है, मेरा बच्चा है ना तो दूसरे का है तो लात मार रहा है, मेरा है तो साइकिलिंग कर रहा है। तो जहां मेरापन है, जहां अपनापन है, वहां पे क्या होता है, वहां पे हम सकारात्मक वही चीज को पॉजिटिव ले लेते हैं। एक बार एक बस में ट्रैवल कर रहे थे तो वहां पे एक बच्चा जो है ना एक खिड़की से कूद के दूसरी खिड़की पे जा रहा था, तीसरे खिड़की पे जा रहा था, और बहुत ही जैसे जैसे बाहर दिखता जाता है खिड़की से बाहर खुशी होती जाती है, उसको उमंग आता जाता है, उल्लास आता जाता है, वो करता जा रहा है करता जा रहा है। एक दूसरा सज्जन व्यक्ति बैठे हुए थे और उनका कुछ बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन उनको अपनी कंपनी में देना था, तो वो तैयारी चल रही थी तो उनके लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था, तो वो बहुत ही जो है नाराज हो गए। और जिसका ये बच्चा था उसको बोला, अरे वह अपने बेटे को जरा बिठा दो शांति से, मुझे कुछ काम करना है, इम्पोर्टेंट काम है। तो उस समय तो उसने कहा ओके ठीक है, अपने बेटे को उसने शांत कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उस बच्चे के पिताजी ने जाकर उस सज्जन से बात किया जो अपने प्रेजेंटेशन बनाने में व्यस्त थे, और उससे कहा कि भैया आपको पता है कुछ दिन पहले कुछ समय पहले ये जो बच्चा है ना वो देख नहीं पाता था और अब उसको रोशनी मिली है, तो आपको पता है उसको कितनी खुशी हो रही है खिड़की से बाहर देखने की, उसको कितना अच्छा लग रहा है। और जैसे ये बात उस सज्जन ने सुनी तो क्या हुआ होगा, उसको भी आया, उसने बुलाया उस बच्चे को, उसके प्रति रहम आई, उसके प्रति एक प्रेम भावना आया, और उसने उस बच्चे को बुलाया और कहा बेटा आओ मेरी खिड़की से भी देखो, यहाँ से देखो, यहाँ आपको बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देगा। और वो अपना प्रेजेंटेशन भी करता जा रहा है, वो बच्चा यहाँ से वहां कूद भी रहा है, लेकिन उसको कोई अभी डिस्टर्बेंस नहीं। क्यों? कारण क्या? समझ, माइंडसेट चेंज। क्यों चेंज? क्योंकि समझ आ गई ना सिचुएशन की। जब तक समझ नहीं थी इट वॉज अ डिस्टर्बेंस, और जैसे ही समझ आ गई तो एक्सेप्टेंस। तो इसीलिए सहनशीलता, जगदम्बा माँ जब हम बन जाते हैं, एक माँ की भावना, परमात्मा सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा के साथ हमारे सब संबंध है ना, तो एक संबंध साजन का भी है, हम आत्माएं उनकी सजनियां हैं, फिर चाहे वो हम पुरुष के शरीर में हो या स्त्री के, आत्मा तो परमात्मा की सजनी भी है। तो जब परमात्मा सर्व आत्माओं का मात पिता है, वो पिता है, तो हम आत्मा उनकी सजनी भी, हम पूरे विश्व की आत्माओं के जगत अम्बा जगत माता है ना, तो हम भी उनकी सजनी होने के कारण जगत माता है। फिर ऐसा नहीं किसी भी मेरा बच्चा है तो इसके लिए मैं पॉजिटिव कि हाँ मेरा बच्चा तो है ना कभी कुछ कर नहीं सकता, हो सकता है आपके बच्चे से ही कुछ हुआ होगा, ऐसा नहीं समझेंगे, लेकिन दूसरे के बच्चे को भी अपना समझकर या दूसरी आत्मा को भी अपना समझकर कि ये परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा के बगीचे का पुष्प है। तो जैसे कोई भी पुष्प उसकी निंदा करता है तो किसकी निंदा होती है, कोई भी पुष्प की अगर निंदा होती है तो किसकी निंदा होती है, उस बगीचे के माली की निंदा हो जाती है। ऐसे ही ये पूरा संसार एक बगीचा है परमात्मा का, शिव बाबा का, हर एक आत्माएं अलग अलग पुष्प हैं, वैरायटी पुष्प हैं, और किसी के बारे में हम गलत सोच करके उसको हमने मन में बिठा दिया तो क्या होगा, उसके बारे में अगर इधर उधर हमने बात कर दी तो क्या होगा, परमात्मा की निंदा होगी। इसलिए देख शक्ति जो बताते हैं समाने की शक्ति, कि निंदा नहीं करना लेकिन समा लेना। जैसे एक सागर है, सागर कभी कंप्लेन नहीं करता, बहता रहता है, उसके अंदर सारे नाले सारे कीचड़ सारी नदियां हर प्रकार का सब कुछ उसके अंदर आता जाता है, पर वो बहता जाता है बहता जाता है, ऊपर बहुत सारी लहरें हैं, लेकिन गहराई में जाइए आप सागर के, तो एकदम शांत, ऊपर बहुत उथल पाथल, गहराई जाइए तो शांति, और तने पर चले जाइए सागर के तो क्या मिलते हैं? सागर के तले पर चले जाइए तो मोती मिलते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये संसार रूपी सागर है, अनेक प्रकार की लहरें हैं, अनेक प्रकार की उथल पाथल हैं। लेकिन आपने कभी अनुभव किया है सागर किनारे जाकर खड़े रहना का? किसने अनुभव किया है? कोई बीच में सागर किनारे जाकर, जब आप खड़े रहते हैं पानी में और लहर आती है तो आप किस तरफ बढ़ते हैं? आप चलना शुरू करते हैं पीछे, लेकिन जब सागर की लहरें आती है तो वो आपको और ही आगे ले जाती है ना। खड़े वहीं के वहीं हैं, लेकिन महसूस क्या करते हैं? जैसे हम आगे जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे ये सागर की लहरें हैं, वो परिस्थितियां हैं जो सागर की लहरों के समान है। लेकिन अगर हम स्टेबल है उस समय अपने अपने ओरिजिनल संस्कारों में, संभाल लेते हैं हम सब कुछ, लेट गो कर देते हैं सब कुछ, पॉजिटिवली सोचते हैं, डिटैच हो जाते हैं हम सब कुछ, हैं वहीं पर सागर की लहरों के अंदर ही, लेकिन होते हुए डिटैच हैं, तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, है ना। हम हमारे जीवन में यही लहरें हमें आगे बढ़ाती है। तो इसलिए समाने की शक्ति बहुत जरूरी है। कल ही हमने परमात्मा के महावाक्य सुने जिसको हम मुरली कहते हैं, और उसमें परमात्मा ने बहुत सुंदर, शिव बाबा ने बहुत सुंदर हमें राज बताया समाने की शक्ति के लिए, कि आप समा लो, लेकिन कैसे समाओ? नेगेटिव को पॉजिटिव करके समाओ। ऐसा नहीं जो नेगेटिव है उसको धारण कर लिया, उसको समा लिया, नहीं तो वो नेगेटिव हमारे अंदर आ जाएगा। लेकिन उस नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करके, चेंज करके उसको फिर संभालो, तो वो समाने की शक्ति हमारे अंदर बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे ये शक्ति बढ़ती है, समाने की शक्ति, तो हमारे अंदर संतुष्टता का गुण आता है। इसीलिए शक्ति के साथ जो देवी बताते हैं वो है संतोषी माँ। संतोषी माँ के हाथ में क्या बताते हैं? चावल, है ना। उनको भोग लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? चना और गुड़, है ना। तो बहुत एसेंशियल्स, संतुष्ट, जो एसेंशियल्स है उससे संतुष्ट, ज्यादा विस्तार में नहीं, ज्यादा ज्यादा इकट्ठा करने में नहीं, चीजों को होर्ड करने में नहीं, लेकिन जो जरूरत है उसको लिया, प्रयोग किया और फ्री रहे, डिटैच हो गए बाकी सबसे, जो एसेंशियल नहीं है उससे डिटैच हो गए, है ना। तो इसलिए संतोषी माँ, संतुष्ट जो है, जैसा है व्यक्ति, उसका जैसा स्वभाव संस्कार है, एक्सेप्टेड, आई एम ओके, वो जो है जैसा है उसके साथ ओके okay. कर सकते हैं, कर सकते हैं, अभी करें, ले आए उस व्यक्ति को सामने जो आपके लिए चैलेंजिंग है, वापस ले आए और अपने आप को कहिए कि ये जो है जैसा है एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि ये जो है जैसा है वो अपने संस्कारों के अनुसार वो एकदम राइट है। मुझे मेरा संस्कार क्या है, मुझे ज्ञान मिला है, इतने विश्व की आत्माओं से शिव बाबा ने मुझे चुना है, मुझे अपना बना करके मुझे ज्ञान दिया है, किसके लिए ज्ञान दिया है? अपने को परिवर्तन करके इस विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए। वो बीड़ा मुझे दिया है, वो कलम मेरे हाथ में दी है, अपनी तकदीर लिखते हुए, दुनिया की तकदीर लिखने के लिए, इतनी बड़ी जवाबदारी मुझ पर, और मैं इसके इस संस्कार को लेकर के असंतुष्ट हो जाऊं या उसकी निंदा करूं, तो इतनी बड़ी जवाबदारी को मैं कैसे निभाऊंगी, है ना। तो अपने स्वमान में आकर अपने आप से संतुष्ट और सामने वाले से संतुष्ट और उसको समाते जाएं, ये है समाने की शक्ति, संतोषी माँ बनकर। ये चार शक्तियां, कौन सी चार शक्तियां? एक बार रिवाइज कर ले, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विथड्रॉ, नेक्स्ट समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप, नेक्स्ट सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट, नेक्स्ट समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट एक्सेप्ट। ये चार शक्तियां अगर हमारे अंदर आ जाती हैं तो बाकी की चार शक्तियां तो बाय प्रोडक्ट हैं, बहुत इजीली आ जाएंगे। इन चार शक्तियों के लिए अगर हम डिटैच हो करके, हमने डिटैचमेंट का अभ्यास कर लिया और डिटैच हो करके हमने इनको इन्वोक कर लिया, इनका प्रयोग कर लिया, इनको यूज कर लिया, तो नेक्स्ट पावर्स ऑटोमेटिकली आती है। और जो नेक्स्ट पावर है वो है परखने की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस फील्ड में हैं उसमें तो कितना इंपॉर्टेंट है परखना, सत्य क्या है असत्य क्या है ना, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। तो हर रीति से हर चीज को परखना होता है हमें, और वो जो परखने की शक्ति है, वो परखने की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है, और वो तब आती है जब हम भीतर चले जाते हैं। इन चार शक्तियों ने हमारा अभ्यास भीतर जाने का बढ़ाया, बाहर की परिस्थितियों से डिटैच होने का बढ़ाया, और जब हम भीतर चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, तब हम व्यक्ति के अंदर क्या है उनकी उन भावनाओं को परख सकते हैं, कितनी शुद्ध है कितनी अशुद्ध है, कितनी प्योर है कितनी इम्प्योर है। उन भावनाओं को जब हम परख लेते हैं, वो गुण है अवगुण है, उन भावनाओं को जब हम गुणों को हम परख लेते हैं, उन शक्तियों को जब हम परख लेते हैं, तब जो हम निर्णय लेंगे वो निर्णय भी हमारा सही होता है। इसलिए परखना बहुत बहुत जरूरी है। कई बार होता है ना, आप देखते हैं कोई, आप रिश्ता करते हैं, आप देखते हैं हाँ ये 36 गुण मिल गए, ये हो गया, ओके ये रिश्ता ठीक है, लेकिन फिर वही बात लव एट फर्स्ट साइट और फिर डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर से उन गुणों को देख लिया और कर लिया, लेकिन अंदर में उसकी क्या भावना है, उसके अंदर क्या चल रहा है वो देख नहीं पाए। बाहर से देखा बहुत बैंक बैलेंस है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत अच्छे बंगलों में रह रहे हैं, बहुत नौकर चाकर हैं, ये बहुत अच्छा है ना, इसके साथ दोस्ती करना रिश्ता करना इट्स गुड फाइन, हमेशा के लिए अच्छा होगा। लेकिन फिर क्या होता है, थोड़े ही समय के बाद पता चलता है कि अंदर से तो बैंक बैलेंस पूरा खाली है, कोई वैल्यू नहीं, कोई गुणी नहीं है, है ना। तो फिर क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। कोई होता है बाहर से बहुत सीधे सादे हैं, सिंपल हैं, कुछ भी नहीं है, दो रोटी है पर दिल बहुत बड़ा है, कहते हैं कि हाँ आप आइए हम आपको हमारी खटिया दे देंगे, हम एक रोटी खा लेते हैं एक रोटी हम आपको दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, परख वो जो है हम परखते हैं कि ये बाहर से कुछ नहीं है लेकिन अंदर में वो गुण है। तो परखने की शक्ति कब आती है, जब आंतरिक आंतरिक नजरिए से देखते हैं, और वो कब आता है, जब हम खुद अपने आंतरिक स्वस्थिति में रहते हैं। तो जब हम स्वस्थिति में रहेंगे तब हम परिस्थिति को सही मायने से परख सकेंगे। इसके लिए गायत्री देवी बताते हैं, जो हंस के सिंहासन पे है, हंस क्या करता है, हाँ हाँ जी हाँ, तो वो मोती चुकता है, दूध ले लेता है, कितना अकलमंद है। और हम इंसान हैं, हम क्या करते हैं, है ना। तो इसके लिए हम भी गायत्री देवी की तरह हंस के ऊपर आसन हो जाएं, और उस आसन पर स्थित होकर के हम वो देखें जो इन आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो आत्मा रूपी चक्षु से, बुद्धि रूपी चक्षु से, बुद्धि एक चक्षु का काम करती है, बुद्धा रूपी नेत्र से, क्योंकि जब ज्ञान होता है ना, वो हम बुद्धि रूपी झोली में, बुद्धि रूपी बर्तन में भरते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं बड़ा बुद्धिवान है जो ज्ञानवान होता है। मनवान नहीं कहेंगे उसके लिए, बुद्धिवान कहेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान है, तो ज्ञान एक चक्षु है, ज्ञान रोशनी है। उस बुद्धि रूपी चक्षु से जब हम देखते हैं तो हमारी परख सही होती है कि ये हीरा है कि पत्थर है। वो जौहरी जब देखता है, परखता है ना, और तब फिर वो हीरे को परख करके उस हीरे से काम लेता है। तो ऐसे ही परमात्मा भी हमें जौहरी बनाता है और परखने की शक्ति देता है, और हम जब अपने आंतरिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो वो परख पाते हैं उसको। और जब हम परख लेते हैं, वो वाइब्रेशन को परख लेते हैं, क्योंकि हम उस ऊंचे वाइब्रेशन में रहते हैं, तो जो नीचा वाइब्रेशन होता है, लो वाइब्रेशन होता है, उसको इजीली परख लेते हैं। और जब परख लेते हैं तो अपने आप को उससे सेव कर सकते हैं, उसको हम उसके अंदर फिर उलझेंगे नहीं, सेफ हो जाएंगे। और फिर क्या निर्णय लेंगे हम? हाँ जी बहन जी, फिर क्या निर्णय लेंगे आप जब परख लेंगे? तो फिर क्या निर्णय लेंगे? तो फिर निर्णय आएगा कि अब मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे जो हमने सीखा कि मुझे क्या करना है, फिर चाहे वो हमारी धारणाएं हो खान पान की, चाहे वो मेडिटेशन की हो, चाहे वो सवेरे जल्दी उठने की हो, चाहे वो रात को सही समय पर सोने की हो, वो निर्णय हम सही रूप से ले पाएंगे, वो निर्णय शक्ति हमारी बढ़ेगी। यहाँ तक कि जो हम निर्णय लेंगे उस पर हम खड़े रहेंगे, फिर चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, हमने निर्णय ले लिया कि वर्तमान समय हम जहाँ बैठे हैं हमें इस पे फोकस करना है, फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसके लिए हम थोड़ा सा उसको कहेंगे वेट, क्योंकि जो हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं उस पर फोकस, अटेंशन, और उस पर अगर फोकस और अटेंशन रहेगा तो जो भविष्य में हमें करना है उसको हम वेट कर सकते हैं, और वर्तमान में जो लाभ लेना है वो लेंगे, पास्ट को हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे। और ये जो हम निर्णय ले लेते हैं और उस पर हम अडिग रहते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। लेकिन अगर हमने निर्णय में कमजोर कर दिया, सब कर रहे हैं तो चलो हम भी चल करते हैं, हम भी जो है ये कर ले, सबको देख करके अगर हम करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारी कमजोरी बढ़ती जाती है, हम वीक होते जाते हैं। इसलिए दूसरों को नहीं देखना, मुझे क्या करना है, उस निर्णय में हम अडिग रहें, उसमें हम मजबूत रहे, खड़े रहें। तो इसके लिए निर्णय शक्ति के लिए सरस्वती देवी बताते हैं, जो सितार बजा रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं, अपना म्यूजिक खुद प्ले कर रहे हैं, चाहे बाहर कितना भी शोरगुल क्यों ना हो, है ना, अपने निर्णय पे अडिग, अपने तकदीर की कलम में, अपने हाथ में है, अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं कि मुझे मेरा निर्णय जीवन का खुद करना है कि मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए। और ये छोटे छोटे बातों में जब हम दृढ़ निर्णय कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में, तो हमारे अंदर आंतरिक शक्ति बढ़ती है। जब बड़ी परिस्थिति आती है तो उसमें फिर हम अडिग स्टेबल रह सकते हैं। नेक्स्ट शक्ति, जब निर्णय शक्ति बढ़ती है, फिर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अचानक वाली भी परिस्थिति क्यों ना हो, पहाड़ जैसी, गोवर्धन जैसी, पर्वत जैसी परिस्थिति भी क्यों ना हो, अकाली मृत्यु जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसका भी हम सामना सहज कर सकते हैं और उसमें भी हम पॉजिटिव रह सकते हैं। अब आप बताइए मुझे, एक छोटे बच्चे ने आपके परिवार में अचानक ही कुछ हो गया और वो उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी अकाली मृत्यु हो गई, अब उस समय पर कैसे सामना हो, उस समय दुख होगा, दर्द होगा। तो अगर दुख हुआ, दर्द हुआ, तो शक्ति घट गई। लेकिन उस समय पर भी क्या हम उस आत्मा के लिए पॉजिटिव सोच सकते, जिस आत्मा का एक्सीडेंट हुआ, उस छोटे से बच्चे के लिए क्या हम उसके लिए पॉजिटिव सोच सकते हैं कि उसके लिए क्या पॉजिटिव सोचेंगे, कि उसकी आगे की यात्रा अच्छी हो, जो है जैसा हुआ ना, वो उसका पाठ जो था वो इतना ही था, लेकिन आगे के लिए उसके लिए अच्छा हो। हो सकता है कि अभी के जीवन में उसके लिए वो नहीं था, जो अब आगे के जीवन में उसको अच्छा मिलना हो, है ना। तो उसके लिए जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो क्या होगा, तो फिर वो दुख दर्द नहीं होगा, लेकिन एक उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग आएगी और उसके प्रति भी हम शुभ भावना देना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर दुख दर्द लिया तो क्या होगा, तो उसके प्रति भी नेगेटिव आ जाएगा, उसके भावना पता नहीं इसका क्या होगा, कैसे होगा, और वो आत्मा पहले ही शरीर छोड़ करके विचलित है और हम वो नेगेटिव भावना देख करके उसको और दुख दर्द दे रहे हैं, तो क्या हम उसके प्रति स्नेही हैं, क्या हमारा वो स्नेह है उसके प्रति, नहीं है ना। तो हम उस परिस्थिति का सामना कैसे कर रहे हैं, तो हमें खुद को देखना है कि हमें सामना कैसे करना है। व्यक्ति और परिस्थिति का सामना बहुत ही शांति से करना है, लेकिन वो कब कर पाएंगे, जब हमारे अंदर की जो कमजोरी है। अब उस परिस्थिति ये है कि उस व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, लेकिन कमजोरी क्या है कि मैंने उसका दुख लिया, मैंने वो दर्द लिया, जो मेरा है कमजोरी है, दुखी होना, अटैच होना, दर्द लेना, उसको मुझे बहुत शक्तिशाली होकर सामना करना है। इसीलिए इस सामना करने की शक्ति में काली माँ बताते हैं, जिनके गले में मुंड की माला है, बहुत भयानक रूप है, उसके हाथ में असुर है जिसका सिर कटा हुआ है, खून बह रहा है। तो सिर कौन सा, ये देह अभिमान का सिर। इस देह अभिमान के सिर से डिटैच हो करके अपने आप से शक्तिशाली होना कि मेरी जो कमजोरी है उसका मुझे डट से सामना करना है। मान लीजिए आप कहीं अकेले जा रहे हैं, सुनसान है, डरावना है, और उस समय पर डर है, अब वो डर का सामना करना है ना, उस नेगेटिव जो मेरे अंदर पनप रहा है उसका सामना करना। मान लीजिए कोई इंसल्ट कर रहा है, अब उस मेरे अंदर जो आत्मा जो इंसल्ट कर रही है उसके प्रति जो नेगेटिव इमोज हो रहा है उसका मुझे सामना करना है, न कि उस व्यक्ति जिसने इंसल्ट किया उसको कुछ ईंट का जवाब पत्थर से दे दूं, वो सामना नहीं करना। लेकिन उसने जब इंसल्ट किया तो मेरे अंदर जो नेगेटिव आ रहा है उसके प्रति उसका सामना करना, मेरे कमजोरियों का सामना करना, मेरी सेल्फ टॉक को चेंज कर देना, ये है सामना करने की शक्ति। कि उस समय पर मैं अपने आप से क्या बातें कर रही हूँ, मैं अपने आप को क्या कह रही हूँ, मेरे क्या विचार चल रहे हैं, उसको पॉजिटिव कर लेना, ये है नेगेटिव को पॉजिटिव करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। तो मुंड की माला मरे हुए किसका मारना है, किसको मारना है, मेरे अंदर के नेगेटिव को, और जीना किसको है, मेरे अंदर के पॉजिटिविटी को जागृत करना। तो ऐसे हमें काली माँ बनना है, खुद के कमजोरियों के लिए, दूसरे की कमजोरी के लिए नहीं। हम क्या करना शुरू कर देते हैं, दूसरे की कमजोरी को देख करके उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, और उसमें हम अपनी कमजोरी, कब उसकी कमजोरी अपनी कमजोरी बन जाती वो नहीं देख पाते, और फिर अपनी ही शक्ति को गंवा देते हैं। तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सामना हमें किसका करना है, और जब ये सामना करने की हमें शक्ति आ जाती है खुद की कमजोरियों की, दूसरे की नहीं, तो दूसरों के साथ हम बहुत प्रेम से, वो चाहे कितना भी गुस्सा कर रहा हो लेकिन उसको समझते हुए उसके साथ हम प्रेम से अपनी बात रखेंगे। जब प्रेम से अपनी बात रखेंगे उसके सामने तो वो वाइब्रेशन उसके पास जाएगा, और उसके अंदर भी वो महसूस आएगी कि वो जो कर रहा है वो सही है या नहीं, और वो महसूसता शक्ति उसके अंदर परिवर्तन लाएगी। लेकिन सामना करने की, उसको ईंट के जवाब पत्थर से देने की जो हम शक्ति बाह्य शक्ति बताते हैं, वो बाह्य शक्ति से वो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आंतरिक शक्ति से, वो वाइब्रेशन से, महसूसता से उसमें परिवर्तन आएगा जरूर। लेकिन हम ये जो भी कर रहे हैं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। इसीलिए जो नेक्स्ट पावर आती है सहयोग देने की शक्ति, जो गोवर्धन पर्वत जैसे महान वो कहते हैं ना कि कितना बड़े से बड़ा पर्वत को भी उठाने के लिए जब श्री कृष्ण ने एक अंगुली दिया तो उन्होंने भी सबका आह्वान किया कि आप भी एक अंगुली दीजिए इस नरक रूपी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। परमात्मा स्वयं आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं और आप सभी का, हम सभी का आह्वान कर रहे हैं एक अंगुली कौन सी, हिम्मत की देने के लिए, सहयोग, इस परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनने के लिए। और वो सहयोग की अंगुली, वो हिम्मत की अंगुली देने के लिए स्वयं परमात्मा में कह रहे हैं। आप सोचिए, अब तक भक्ति मार्ग में तो हम पुकारते आए कि ये भगवान मेरी मदद करो, और अब परमात्मा आपको कह रहे हैं कि हे बच्चे इस कलयुगी दुनिया को सत्युग बनाने में मेरी मदद करो। तो आप सोचिए कितना बड़ा स्वमान परमात्मा हमें देते हैं। इस शक्ति के साथ जो देवी बताते हैं वो है महालक्ष्मी, जिनके दोनों हाथ ऐसे हैं, है ना, महालक्ष्मी जी के दोनों हाथ ऐसे, यहाँ से भी दे रहे हैं तो यहाँ से भी दे रहे हैं। यहाँ से क्या दे रहे हैं, सोने की मुद्राएं धन, और यहाँ से आशीर्वाद। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमें सोने की मुद्राएं देना है, सोने की मुद्राएं किसका सूचक है, ज्ञान धन, ज्ञान धन पॉजिटिविटी का। चाहे सामने वाला कैसा भी हो, कोई बीमार है तो हम ये कहेंगे हाँ अच्छा हुआ बना बीमार है, पढ़ा रहे काम ही उसने ऐसा किया, कहेंगे ऐसा नहीं कहेंगे ना, हम कहेंगे चलो हम कुछ तो मदद करें, जाकर चाहे पानी ही पिला दें उसको, बेचारा कमजोर है, है ना, एक रहमत सहयोग देंगे चाहे वो कैसी भी स्थिति में है। तो ज्ञान धन, ज्ञान का सहयोग, ज्ञान युक्त सहयोग देना, मर्यादा युक्त सहयोग देना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो फिर सहयोग देने का भी गैर फायदे हो जाते हैं। इसके लिए ज्ञान युक्त सहयोग देना, मर्यादा में रह करके सहयोग देना। और जब हम वो ज्ञान युक्त सहयोग देते हैं तो ये हमेशा वरदानी दूसरों के प्रति, हमेशा शुभ भावना, हमेशा श्रेष्ठ भावना उस आत्मा के प्रति रहेगी। फिर चाहे उसने गलत किया है लेकिन हम उसके प्रति ब्लेसिंग दें, ये देने की भावना, ये है सहयोग देना, ये है सहयोग शक्ति, ये सबसे बड़ी शक्ति है। और ये शक्ति तब आ जाती है जब सारी शक्तियां हमारे अंदर आ जाती है, तो ये सहयोग देने की शक्ति ये अंतिम शक्ति सो आधी शक्ति हो जाती है, है ना। इसीलिए यहाँ का जो लक्ष्य है वो मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना, अर्थात देना, देवता अर्थात देना, देना ये हमारा लक्ष्य है, न कि लेना। लेने में हम शक्ति गवाते हैं और देने में हम शक्ति बढ़ाते हैं अपनी। इस कायदे को, इस यूनिवर्सल लॉ को हम अच्छे से अंडरलाइन कर लें और अपने आप को बार बार स्मृति दिलाते जाएं। बार बार स्मृति दिलाना इन शक्तियों का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बार बार स्मृति दिलाएं। परमात्मा हमें यही कहते हैं, एक तो शुभ चिंतन करो, एक शुभ भावना रखो और एक शुभ स्मृति अपने आप को बार बार याद कराते जाओ। कौन सी, जो हमारे जानकी दादी जी जो इस संस्था के हमारे मुख्य रहे थे, जिन्होंने 104 की आयु में अपना शरीर छोड़ा था, उन्होंने भी यही मंत्र दिया, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। बस ये याद कर लें, मैं कौन, मैं आत्मा, कौन सी आत्मा, कौन सी आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान आत्मा। मेरा कौन, एक शिव बाबा, उनके साथ मेरे सारे रिश्ते, सारे जो रिश्ते चाहिए वो सर्व रिश्ते उनके साथ, वो निभाना। तो अब मुझे क्या करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मेरा पिता सर्वशक्तिवान, तो अब मुझे क्या करना है? शक्तिशाली बन, औरों को शक्ति देते रहना है, ये मेरा कर्तव्य है। सबको देना न कि लेना, किसी से आश नहीं रखना, लेकिन सर्व की आशाओं को पूर्ण करना। तो जब इस धंधे में हम लग गए, देने के धंधे में, लेना कहाँ से है? ऊपर वाले, और किसी से नहीं लेना है। आप पानी जब पौधे को देते हो तो कहाँ देते हैं? उसको फलीभूत करने के लिए पानी कहाँ देंगे? पत्ते को देंगे? नहीं, जड़ों में देंगे ना। तो इसीलिए ये संसार रूपी वृक्ष जो उल्टा है, जिसका बीज ऊपर है, जड़ों में हम बैठे हैं, तो हमारा पानी हमें अपने आप को, आत्मिक स्मृति को देना है, परमात्मा की स्मृति को देना है जो बीज है। जब उनके साथ कनेक्टेड हो गए, अपने आप से कनेक्टेड हो गए, परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो गए, तो वो पावर, वो शक्तियां जो परमात्मा की, जो सूर्य से कनेक्ट हो गए, तो उनके जो तेज है, उनकी जो रोशनी है, जो शक्ति है, वो ऑटोमेटिकली पत्ते पत्ते तक पहुंचती ही जाएगी। लेकिन पत्ते पत्ते को पानी देना शुरू कर दो, आज इसको खुश कर रहे हैं, कल उसको कर रहे हैं, आज इसको देखा इसने ऐसा कर दिया, कल उसको देखा, इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, फिर भी गुस्सा आ गया। तो हम तो अभी अभी ज्ञान मिला, हम कैसे कर पाएंगे गुस्से पर विजय? तो इधर देख लिया, उधर देख लिया, पत्ते पत्ते को देख लिया, उनको पानी देना शुरू हो गया, तो फिर मुरझाए हुए ही रहेंगे, कभी भी आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए इस नियम को भी, संसार के नियम को, यूनिवर्सल लॉ को, कि पानी जड़ों में देना है, कनेक्ट अपने मूल संस्कारों से होना है, जड़ों से होना है, परमात्मा बीज से होना है, तब जाकर कि ये शक्तियां हमारे अंदर फलीभूत होगी। इसलिए इस बुद्ध रूपी घड़े को भरे रखना है। अभी भर लिया है ना सभी ने? अब घड़े में, अगर एक मटके में आपने दूध भर दिया, उसको आपने नॉक किया, तो क्या छलकेगा? दूध छलकेगा? ये खाली है, इसको नॉक किया तो क्या हो रहा है? आवाज हो रहा है ना। खाली घड़ा है, नॉक किया तो आवाज होगा। अब हमने इसमें इतना ज्ञान भर दिया, इतनी गुण शक्ति भर ली, अब यहां से हम जाएंगे अपने कर्म क्षेत्र पर, नॉक हुई परिस्थितियों की, अब क्या छलकेगा? जो हमने भरा है ज्ञान, अगर उस वो भरा रहा, उसको भरे रखे, तो फिर वही छलकेगा। लेकिन हम भर तो लिया, चलते चलते दूसरे को देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लीक होता जा रहा है, वो लीक होता गया, और जब परिस्थिति आई सामने, या खाली परिस्थिति ने नॉक किया, तो क्या होगा? तो आवाज होगी, कौन सी आवाज होगी? गुस्से की, चिड़चिड़ेपन की, उसके प्रति निंदा करने की, उसके प्रति ईंट का जवाब पत्थर देने की, हर प्रकार की आवाज होगी, होगी ना। लेकिन कब हुआ? जब यहाँ खाली है, बुद्धि रूपी घड़ा खाली है। इसीलिए जब गुस्सा आए तो दूसरे को नहीं देखो, तब चेक करो कि मेरा घड़ा खाली तो नहीं हो गया, इसलिए आवाज हो रहा है गुस्से का। तो इसलिए उस समय पर तुरंत अपने मूल संस्कारों से कनेक्ट हो जाए, तुरंत परमात्मा को याद कर ले, उनकी शक्तियों को अपने अंदर भर ले, उनसे कनेक्ट होते ही वो आ जाएंगे, और फिर उस नजरिए से उसको देखें, उसको समझने की कोशिश करें, तो आप देखिए वही प्यार वो झलकेगा, तो ऑटोमेटिकली स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए हम जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं। एक बार एक रिसर्च हुआ था, आपने सुना होगा इसके बारे में, पानी रखा था, सबने नेगेटिव वर्ड्स बोले, उस पानी को फ्रीज किया तो क्या हुआ? वो एकदम गंदा हो गया। जब क्रिस्टलाइज किया और देखा तो उसमें कोई क्रिस्टल नहीं, एकदम गंदा। वही दूसरा पानी रखा, पॉजिटिव पॉजिटिव बोले, और उस पानी को जब फ्रीज कर दिया और उसको देखा तो बहुत सुंदर क्रिस्टल्स हुए। हमारा बॉडी कितना परसेंट पानी का बना हुआ? अबाउट 70-80% पानी का बना हुआ। यहाँ पर हम जो सोच रहे हैं वही हमारी आवाज है ना, बोलते तो बाद में हैं। तो जो सोच रहे हैं हम नेगेटिव सोच रहे हैं, अच्छा उसकी कैसी हिम्मत, हमारे बाल ऐसी थोड़ी सफेद हो गए, उसकी कैसी हिम्मत जो वो ऐसा करे मेरे साथ, हाँ उसके बारे में से सोच ही रहे हम, और उसका असर किस पर जा रहा है, हमारे इस 70% बॉडी पर जा रहा है। क्या पैदा होगा, टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी, हॉर्मोन्स कैसे होंगे नेगेटिव, तो उसका रिजल्ट क्या, उसका इफेक्ट किसको हो रहा है, मेरे ही बॉडी को हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, मेरा ही हेल्थ नुकसान कर रहा है, सोच रहा है दूसरों के बारे में नेगेटिव, लेकिन उसको चेंज कर दिया हमने, सेल्फ टॉक कर दिया पॉजिटिव, मेरे ओरिजिनल संस्कार में रह गए, उसके भी ओरिजिनल संस्कार में आ गए, परमात्मा से शिव बाबा से कनेक्ट हो गए, हाँ तो फिर क्या हो गया, मुस्कुराने लगे हम अपने जीवन में, मुस्कुराने लगे तो क्या हो गया, पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज हुए, उसका असर किस पर हो रहा है, उस 70% वाटर पर, 80% वाटर पर जो मेरे शरीर में है, फायदा किसको हो रहा है, मुझे हो रहा है। तो हम किस लिए पॉजिटिव रह रहे हैं, स्वयं के लिए, कब तक रहेंगे, हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमेशा हेल्दी रहना है, हेल्दी कब तक रहना है, हेल्दी कब तक रहना है, हमेशा के लिए रहना है ना, तो इसके लिए पॉजिटिव कब तक रहेंगे। कभी कोई सोचते हैं हम कब तक पॉजिटिव रहे, वो तो यही जा रहा है कि यही जा रहा है, तो हम कब तक रहे, कब तक रहेंगे, हमेशा के लिए। क्यों, रीजन क्या है कि हम किस लिए रह रहे हैं, क्योंकि मेरा संस्कार पॉजिटिव है, हम रह रहे हैं स्वयं के हेल्थ के लिए, स्वयं को हेल्दी रखने के लिए, और स्वयं को हेल्दी, स्वयं को देवता बनाने के लिए कर रहे हैं, तो उससे तो विश्व परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। तो इसीलिए इन अष्ट शक्तियों का चिंतन करते रहें, इनका आह्वान करें, ये बाहर नहीं है, बाहर परिस्थितियों में तो कोई शक्ति नहीं है, इसलिए बाहर नहीं है, लेकिन कहाँ है, भीतर है, अपने अंदर है। एक बार एक सन्यासी बैठा था, हाँ, और वहां पे एक दूसरे गांव से व्यक्ति आया उससे मिलने के लिए, अचानक ही तूफान आ गया, बारिश हो गई, उस सन्यासी के झोपड़ी से पानी गिरने लगा, तो वो व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं आपसे कल मिलने आता हूँ, अभी तो बहुत तूफान है, आप भी भागो मैं भी भागता हूँ, फिर कल देखते हैं क्या होगा कैसे होगा, कल देखते हैं सवेरे। तो वो तो वहां से भाग गया, सन्यासी तो वहीं बैठे रहे अपनी तपस्या में। दूसरे दिन जब सब कुछ शांत हो गया, सवेरे वो आया कि अच्छा देखते हैं वो फलाना सन्यासी कहीं चला तो नहीं गया, भाग तो नहीं गया, अगर होगा तो मिल लेता हूँ। और वहां गया तो देखे, अरे तो यहीं बैठे हैं। बोले महाराज आप भागे नहीं? तो लेकिन मैं भागा तो हम दोनों ही, आप भी भागे मैं भी भागा, आप बाहर भागे मैं भीतर भागा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, परिस्थिति को देखकर कहाँ भागना है, परिस्थिति को देखकर घबरा करके उसके ऊपर ही हावी नहीं होना है, लेकिन भीतर भागना है, और अपने भीतर अपने आप से कनेक्ट होकर, परमात्मा से, सर्वशक्तिवान से कनेक्ट होकर, मैं शिव की शक्ति हूँ, चाहे वो शरीर पुरुष का हो या नारी का, मैं शिव शक्ति हूँ। और इन देवियों की स्मृति से अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति से विजयी बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो चले कुछ मिनटों के लिए अभ्यास कर लें इसी का, एकदम सीधे बैठ जाएंगे, और जो हम अभी करेंगे वो हमारा संस्कार बन जाएगा। आंखें खुली रखेंगे, क्योंकि हमें कर्म क्षेत्र पर आंखें खुली रख करके सामना करना है, इसलिए आंखें खुली रखेंगे और बुद्धि रूपी चक्षु से देखेंगे, सामने देखेंगे मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से, मस्तक के बीच में अपने, बुद्धि से देखिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, एक शक्तिशाली आत्मा हूं, छोटा सा हीरे की तरह इस भ्रकुटी के बीच में चमक रहा हूं, ये शरीर एक कुर्सी की तरह है जिसकी मैं आत्मा मालिक हूं, ये शरीर एक पिंजरे की तरह है और मैं आत्मा पंछी हूं, उड़ चले इस पिंजरे को छोड़कर ऊपर आकाश की ओर, और ऊपर देखें आकाश से भी ऊपर एक सुनहरा लाल प्रकाश की दुनिया है, और उस सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में हम सभी हीरे की तरह चमक रहे हैं। ध्यान से देखिए कितना सुंदर दृश्य है, जैसे लाल कारपेट पे हीरे लगा दो। ऐसे सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में हम सभी आत्माएं हीरे की तरह चमक रही हैं। और ध्यान से देखिए एक बेदाग हीरा है सबसे ऊपर की ओर, एक बेदाग हीरा, सर्वशक्तिवान, जो मेरा अपना पिता है, मेरा परमात्मा, सर्व संबंध से मेरा अपना। उस शिव बाबा को प्यार से देखिए, निहारिए उनके सानिध्य में, उस सर्वशक्तिवान की शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण कीजिए, महसूस कीजिए अपने आंतरिक शक्तियों को। सर्व शक्तियां परखने की, निर्णय करने की, सामना करने की, सहयोग देने की, डिटैच होने की, समेटने की, सहन करने की, समाने की, सर्व शक्तियों से संपन्न मैं मास्टर सर्व शक्तिवान। दिल से शुक्रिया करें शिव बाबा का और प्रतिज्ञा करें कि इन शक्तियों रूपी शस्त्रों को हमेशा धारण किए हुए मैं शिव की शक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान हर परिस्थिति में विजयी आत्मा हूँ और विजयी बनकर रहूंगी। इसी में कितना सुख है, कितना अतीन्द्रिय सुख, कितनी आंतरिक शांति, यही सशक्तिकरण है, आत्मा का सशक्तिकरण। और ऐसे में सशक्त आत्मा इस शरीर में वापस आकर जब इन आंखों से बाहर देखती हूँ, अपने इस बुद्धि रूपी नेत्र से उन आत्माओं को देखती हूँ जो परमात्मा की संतान मेरे अपने हैं, चाहे कैसी भी भाषा के, जाति के, सब मेरे अपने, परमात्मा के बगीचे के पुष्प बहुत अच्छे हैं। दिल से सबके लिए दुआएं निकले, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। कल्याणकारी शिव बाबा की मैं संतान, कुछ अकल्याण हो ही नहीं सकता, अकल्याण भी कल्याण में परिवर्तन। ऐसे इस पूरी दुनिया को एक सत्युगी दुनिया बनाने की कलम मेरे हाथ में है, उस कलम को अपनी तकदीर श्रेष्ठ बनाकर देवता जैसे देने के संस्कार से अपनी तकदीर लिखने वाला, लिखने वाली, और इस तकदीर से दूसरों की तकदीर बनाने वाली मैं श्रेष्ठ मीडिया कर्मी, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। लुक इन बी पीसफुल, लुक अप बी ग्रेटफुल, एंड लुक आउट बी यूजफुल, बी पावरफुल। ओम शांति।